ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धश्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाक्षं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पाञ्चाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्रीपद रामानुजाचार्य का तिरुभाव तिथि है। पद्म पुराण में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के महिमा के बारे में। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से जानना चाहते हैं भागवतम की जो ग्लोरीज है, और उसके साथ ही साथ पद्म पुराण में जब भगवद गीता के महात्म्य का वर्णन पार्वती देवी ने अपने जो पति हैं शिव जी से जब सुना, जब 18वां अध्याय एंड हुआ, तो उन्होंने कहा कि सारे शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, निगम कल्पतरम गलितम फलम, ऐसे श्रीमद् भागवतम की महिमा को मैं सुनना चाहती हूँ। आप भागवत की महिमा को अधिक से अधिक वर्णित कीजिए। शिव जी बहुत उत्साह से भागवत की महिमा को बोलने लगे, और जिसमें वो वर्णन करते हैं नारद का जो मीटिंग है भक्ति देवी के साथ। तो नारद जब भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय नारद ने देखा कि एक जो बहुत सुंदर तरुणी बहुत अस्वस्थ अवस्था में है, और उसके साथ दो वृद्ध जो कोई पुरुष पड़े हुए हैं, वो बारंबार उनके पास जा रही है, उनको उठा रही है, फिर इधर उधर घूम रही है, उसके साथ साथ कई सारी स्त्रियां पंखा लेकर उस सुंदरी को फैनिंग कर रही है। तो ये सब चीजें नारद दूर से देख रहे थे। नारद बड़े अचंभित हो जाते हैं, और नारद ने देखा कि ये कौन हो सकती है ये स्त्री। तो नारद उसके नजदीक जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन हो, क्या कारण है आपके ऐसी स्थिति का, और ये दो पुरुष जो आपके चरणों के पास लेटे हुए हैं उनकी अवस्था क्यों ऐसे हुई है। और साथ ही साथ पूछते हैं कि इतनी सारी स्त्रियां आपके चारों ओर हैं, आपकी अलग अलग प्रकार से सेवा कर रही है, वो सब कौन है। तो वो बोलती है, वो सुंदर युवती, वो कहती है कि मैं तो साक्षात भक्ति हूं, भक्ति देवी हूं, और ये सारी जो स्त्रियां मेरे इर्द गिर्द है ये सब अलग अलग महान नदियां मुक्ति मुक्तियां हैं जो मेरी सेवा में संलग्न है, और ये जो दो पुरुष मेरे चरणों में गिरे हुए हैं वो कौन है? वैराग्य और ज्ञान। तो नारद पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरा जो जन्म है वो कहां हुआ था? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश दक्षिण भारत है और वास्तव में भक्ति देवी का जन्म स्थली है। और उन्होंने कहा कि मैं जब द्रविड़ देश में जन्म लिया, वहां से जब मैं कर्नाटका में आई तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, कर्नाटका को क्रॉस करते में महाराष्ट्र में पहुंचे तो बहुत हेल्दी हो गई, हरी भरी और बहुत तारुण्यता मुझे महसूस हुई। लेकिन गुजरात में मैं आए तो पाखंडियों के कारण मैं मुझ में जर्जरता आ गई। लेकिन फिर मैं वृंदावन में, अभी ये सब कहा हो रहा था वृंदावन में, तो वृंदावन में जब मैं यहां पहुंची हूं तो अभी मुझे मेरा नवयौवन सामर्थ्य वापस प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति देवी है उसकी जन्मस्थली दक्षिण भारत है, जिसे द्रविड़ देश कहा जाता है। और ये चार संप्रदाय है, इन चारों संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य है उनका जन्मस्थली भी कहा है? दक्षिण भारत है। मध्वाचार्य, रामानुजा, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, तो ये चारों प्रोमिनेंट आचार्य दक्षिण भारत में वास्तव में प्रकट होते हैं। और इनका एक में जो कार्य है वो बनता है भगवत भक्ति की स्थापना करना और हर जीव के हृदय में भगवत भक्ति को उदित करना, ये आचार्य का काम है। गुरु का कर्तव्य क्या है? कि शिष्य के हृदय में भगवत भक्ति को जागृत करना। इसलिए वो गुरु दक्ष है जो ऐसे ऐसे विधियां ढूंढता है और अपने शिष्य को लगाता है जिसके द्वारा शिष्य के हृदय में भगवत भक्ति का उदय हो। इसलिए तो प्रभुपाद ऐसे दक्ष आचार्य है। ऐसे रजोतमो गुण से भी अत्यधिक नीचे धरातल के लोगों में भी उन्होंने भगवत भक्ति उजागर की, कई प्रकार की विधियां उन्होंने अलग अलग शिष्यों को प्रदान की और जिनके हृदय में भगवत भक्ति की क्या की, उन्होंने पुनर्स्थापना की। इसलिए ऐसे महान आचार्यों का आना ये इस पृथ्वी के लिए सबसे मंगलमय कार्य है। और ऐसे महान आचार्य जब अप्रकट हो जाते हैं तो अत्यधिक दुखी ये पृथ्वी माता होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो ये वैष्णव गण है, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद, ये जो वैष्णव भक्त है ये अवनी पृथ्वी की क्या है? संपदा है। और ये जो वैष्णव गण चलते पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी देवी अत्यधिक आनंद का अनुभव करती है, और आसुर नास्तिकों के पांव पड़ते हैं तो पृथ्वी माता को कांटों के जैसे कठिनाई महसूस होती है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बारे में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास आप तो पृथ्वी के रत्न हो, और आप इस संसार से चले जाओगे तो ये मेदिनी पृथ्वी क्या होगी? रत्न से शून्य होगी, और अत्यधिक दुख मुझे होगा क्योंकि मुझे आपका संग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कितनी विनम्रता हरिदास ठाकुर में। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, आपके पास तो बड़े बड़े भक्तों का संग आदि है, मेरे जैसे छोटे तुच्छ शूद्र नगण्य भक्त ही जगत से चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही एटीट्यूड वास्तव में हमारे अंदर होना चाहिए। हमें भी लगता है कि मैं कौन हूं? एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूं। तो हरिदास ठाकुर की जब वाक्य को सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और चैतन्य महाप्रभु द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और और इतना ही नहीं, हरिदास ठाकुर ने कहा कि कई सारी चींटियां इस संसार में है, एक चींटी मर जाती है तो किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महाप्रभु जानते हैं कि हरिदास ठाकुर कोई सर्वसाधारण चींटी के समान या सर्वसाधारण व्यक्ति के भांति नहीं है। हरिदास ठाकुर वास्तव में महाप्रभु के लिए अत्यधिक प्रिय है और दूसरा इस पृथ्वी के लिए भी क्या है, एक रत्न है। तो उसी प्रकार से ये जो आचार्य गण है वो आते हैं तो पृथ्वी माता आनंदित हो जाती है और इस संसार से ऐसे महान आचार्य प्रयाण करते हैं तो पृथ्वी देवी सर्वाधिक दुखी हो जाती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस बारे में गीत लिखते हैं अपने प्रार्थना में। तो ऐसे ही ये जो आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य अवतरित होते हैं और सर्वाधिक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं और अधिक से अधिक जीवों को वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और जो सर्वोच्च सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद उसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे हम कल सुन भी रहे थे कि अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया और अपने ये जो संप्रदाय है उसमें उन्होंने लागू किया। तो ये जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिनमें से चैतन्य महाप्रभु ने दो प्रमुख शिक्षाएं ली और वो दो शिक्षाएं वास्तव में हम देखते हैं प्रभुपाद के आंदोलन में। प्रभुपाद ने कितना अत्यधिक रूप से इन दो चीजों पर भी बल दिया है। इतना ही नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने बल दिया बल्कि हमारे पूरी गुरु परंपरा में देखेंगे तो ये दो शिक्षाओं को हर एक आचार्य ने महत्व दिया है और अपनी शिक्षाओं के द्वारा उसको प्रदर्शित किया है। तो दो चीजें क्या थी, एक था अनन्य भक्ति अनलॉय डिवोशनल सर्विस और दूसरा था भक्त जन सेवा, जो भक्तों की सेवा है वो ये श्री संप्रदाय के दो प्रमुख पिलर है। मध्वा संप्रदाय की दो चीजें हैं। महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसमें एक चीज प्रमुख है, कृष्णा कृष्णा एक पर्सन है, श्री मूर्ति का सेवन ये प्रमुख। महाप्रभु ने इस एक क्वालिटी के कारण मध्वाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार किया क्योंकि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद माय स्वरूप है, उनका नित्य विग्रह है। इस एक चीज के कारण चैतन्य देव मध्वाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। लेकिन उस चीज को और प्रबल बनाने के लिए रामानुजाचार्य के संप्रदाय से दो प्रमुख शिक्षाएं स्वीकार करते हैं, एक है अनन्य भजन और दूसरा है भक्तों की सेवा। तो हर आचार्य हर संप्रदाय इस पर जोर देता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, हम अपने जीवन में भक्तों की या वैष्णव आचार्य की सेवा नहीं करते या किए बिना कैसे इस संसार से हमारा निस्तार हो सकता है। भक्ति रो ठाकुर ने भी वही कहा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं भगवत भजन तब हमारे लिए सरल बनता है जब हम क्या करते हैं, शुद्ध भक्त के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी चरण रज को अपने सर पे धारण करते हैं। चरण रज को सर पे धारण करने का मतलब है उस वैष्णव या आचार्य या गुरु के जो आदेश है उनको सर पर रखना, उनको सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देना। जैसे रामानुजाचार्य के जीवन में एक वर्णन आता है, रामानुजाचार्य को मिलने के लिए जब यमुनाचार्य श्रीरंगम में शरीर त्यागने वाले थे तो यमुनाचार्य ने कहा कि वास्तव में इस संप्रदाय की धरोहर आगे कोई ले जा सकता है तो वो एक ही भक्त है, और वो है श्रीपद रामानुजाचार्य। तो ये रामानुजाचार्य को उद्धारक आचार्य कहते हैं, कोई सर्वसाधारण आचार्य नहीं है, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद एक स्पेशल आचार्य है। कई सारे आचार्य आए या हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद का एक अपना स्थान है। उसी प्रकार से श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य आए, लेकिन रामानुजाचार्य का एक प्रमुख स्थान है, और वो है उनको उद्धारक आचार्य के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, रामानुजाचार्य से पहले कई सारे आचार्य हुए, यमुनाचार्य, नाथ मुनि, उनसे पहले 12 अलवर हुए। कलयुग जैसे शुरू हुआ, कलयुग शुरू होकर 100 साल हुए, उस समय 12 प्रमुख भक्तों ने अवतार लिया, 12 अलवराज, जिनको श्री वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है। और तो ऐसे रामानुजाचार्य इनमें भी वास्तव में सबसे प्रमुख है। और देखा जाए, रामानुजाचार्य कौन है, कृष्ण और बलराम और से क्या है, राम और लक्ष्मण, उनमें से इनके नाम से ही पता चलता है। राम अनुज, राम के जो छोटे भ्राता है, वो कौन है, लक्ष्मण है। तो जो बलराम अपना विस्तार करते हैं अनंत शेष के रूप में, और जनरली वो दो और अपने विस्तार करते हैं या कृष्ण की सेवा करते हैं, एक भगवान के लिए बेड बनते हैं, हम कहते थे अनंत शैया पर भगवान लेते हैं। तो अनंत शेष बलराम का प्रमुख सेवा है कृष्ण की सेवा करना अलग अलग रूपों में। तो जब वो अपना स्वरूप या विस्तार करते हैं, एक तो है बेड के रूप में और दूसरा है अम्ब्रेला के रूप में, और कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। उससे भी और एक इंपॉर्टेंट सेवा बलराम कृष्ण के लिए करते हैं, या अनंत शेष कृष्ण के लिए करते हैं, और वो क्या है, अपने अनंत मुखों से अनंत सालों तक, सालों से क्या करना, भगवान के गुणों का गान करना, ये टॉप मोस्ट सर्विस है। और ये कब की जाती है, भगवान सोने से पहले और सोने के उठने के तुरंत बाद कृष्ण का गुणगान होना चाहिए। इसलिए कई इस्कॉन टेम्पल्स में शयन आरती होती है। अब जाओगे तिरुपति, चौपाटी, मुंबई, कई प्लेसेस में शयन आरती होती है। भगवान सोने से पहले क्या करते हैं, भक्त लोग विशेष कीर्तन करते हैं, उनका विशेष गुणगान करते हैं। और जैसे भगवान उठते हैं तो सुबह सुबह हम मंगल आरती के रूप में उनका गुणगान करते हैं। तो जब ये अनंत शेष भगवान का गुणगान करने के लिए एक विशेष अपना विस्तार करते हैं, तो उसको कहा जाता है, वो जो शक्ति है उसको कहते हैं कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कौन सी शक्ति, भगवान की तो कई शक्तियां हैं, भगवान को धारण करते हैं अनंत शेष, उसको कहा जाता है धारण शक्ति। लेकिन जो भगवान का गुणगान करने की शक्ति है वो है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। और ये जब शक्ति अपना मूर्तिमान रूप धारण करती है, तो श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि वो कौन है, साक्षात श्रीपाद रामानुजाचार्य। जैसे प्रभुपाद को हम क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण के कृपा की साक्षात मूर्ति है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा वर्णन शक्ति की जो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है वो श्रीपद रामानुजाचार्य है। और वास्तव में भगवान की शक्ति के बिना कोई व्यक्ति कृष्ण कथा का वर्णन उचित रूप से कर नहीं सकता। इसलिए भगवान ये शक्ति महान महान वैष्णव भक्तों के कंठ में दे देते हैं। शुकदेव गोस्वामी है, प्रभुपाद जैसे महान आचार्य है। हाँ, तो ये जो शक्ति जब अपना मूर्तिमान स्वरूप धारण करती है तो उनको श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं। और वास्तव में अनंत शेष के ये शक्त्याविश अवतार है श्रीपद रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य प्रकट होने से पूर्व ही उनके जो पूर्ववर्ती आचार्य थे यमुनाचार्य, उनसे पूर्व थे नाथ मुनि। तो ये नाथ मुनि के जो पुत्र थे, उनके पुत्र के जो पुत्र है वो यमुनाचार्य है। तो नाथ मुनि ने यमुनाचार्य को कहा था कि हे यमुना, यमुनाचार्य का नाम इसलिए पड़ा था यमुना क्योंकि उनके माता पिता वृंदावन आए थे, और जब वापस श्री पेरुम्बदूर अपने गांव गए तो वहां उन्होंने जब पहला पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा क्या नामकरण करना चाहिए, तो वृंदावन का स्मरण रहे इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम यमुना लिख कर दिया रखा, तब से वो यमुनाचार्य कहलाए। तो ऐसे नाथ मुनि ने अपने इस महान आचार्य यमुनाचार्य को कहा था कि देखो यमुना, एक महान आचार्य प्रकट होगा एक समय में और वह आपका शिष्य होगा जो हमारा भी उद्धार करेगा, यही खासियत है श्री संप्रदाय की। एवं जो महान आचार्य है, गुरु है, वो भी अपने आप को क्या समझते हैं, सबका दास समझते हैं, श्री संप्रदाय की एक विशेषता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अत्यधिक आकृष्ट थे श्री श्री संप्रदाय की शिक्षा से, इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब अपने शिष्यों को सामने देखते थे तो उनको क्या कहते थे, दासोस्मि, मैं आपका सेवक हूं, तो इसमें कोई कमी नहीं है। यह वास्तव में सर्वोच्च जो भगवत प्रेम का एक प्रकार का एक लक्षण है। तो नाथ मुनि ने और यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य अवतरित होने से पूर्व ही क्या किया था, उनके विग्रह की स्थापना की थी रामानुजाचार्य के, और उनकी पूजा और सेवा शुरू की थी। तो ये श्री संप्रदाय की विशेष स्थिति है कि वहां उन्नत से उन्नत भक्त ये नहीं सोचता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जब रामानुजाचार्य एक बार तिरुपति गए बालाजी का दर्शन करने के लिए, तो जो यमुनाचार्य के सबसे बड़े शिष्य हैं, जिनका नाम था शैलपूर्ण, वो तिरुपति के, भगवान तो तिरुमला पहाड़ के ऊपर रहते हैं, तिरुपति तो नीचे विलेज है, टाउन है। जब तिरुमला में ये शैलपूर्ण थे और रामानुजाचार्य श्रीरंगम से दर्शन करने के लिए गए, तो जैसे शैलपूर्ण को पता चला कि श्रीपद रामानुजाचार्य आ रहे हैं और रामानुजाचार्य उस पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे थे क्योंकि वो पहाड़ अनंत शेष से अभिन्न है, जैसे गोवर्धन है यहां साक्षात कृष्ण है, तो उसी प्रकार से जिस पर बालाजी निवास करते हैं वो अनंत शेष है। तो रामानुजाचार्य ने सोचा मैं कैसे जाऊं, उसके ऊपर मैं पांव नहीं दे सकता, चढ़ नहीं सकता, तो ऐसे महान आचार्य आए हैं तो उनका स्वागत करने के लिए शैलपूर्ण उस पहाड़ के ऊपर थे, उन्होंने सोचा मुझे स्वागत करने के लिए दौड़ना चाहिए। तो प्रमुख आचार्य थे, शैलपूर्ण ने स्वयं अपने हाथ में मालाएं दी, स्वयं अपने हाथ में प्रसाद आदि लिया और श्रीपद रामानुजाचार्य का स्वागत करने के लिए वो नीचे पहुंच गए और रामानुजाचार्य को उन्होंने माला आदि पहनाई। तो रामानुजाचार्य ने कहा आपको कोई और भक्त नहीं मिला, नया भक्त जिसको आप भेज देते मेरा स्वागत करने के लिए, आप इतने महान आचार्य, आपको साक्षात डायरेक्ट आने की क्या आवश्यकता है। तो शैलपूर्ण ने कहा कि, और वास्तव में शैलपूर्ण की जो सिस्टर है, शैलपूर्ण महान सन्यासी थे, उनकी जो सिस्टर थी कांतिमती, उनके पुत्र थे रामानुजाचार्य, उनकी दो सिस्टर थी दीप्तिमती और कांतिमती, तो उनके पुत्र थे वास्तव में रामानुजाचार्य। कांतिमती का विवाह एक महान ब्राह्मण से हुआ था और जब कई साल बीते तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, श्री पेरुम्बदूर में वो रहा करते थे, तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा चेन्नई, वहां समंदर के तट पर एक टेम्पल है पार्थसारथी मंदिर, उन्होंने सोचा उस पति पत्नी ने कि पार्थसारथी के पास जाना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी, याचना करनी होगी कि हमें एक ऐसा पुत्र दो जो कृष्ण का महान भक्त बने, तो ये है जिनका नाम था आसुरी केशवाचार्य, शतक्रतु भी उन्हें कहते हैं। तो ये दोनों वहां पार्थसारथी मंदिर जाते हैं चेन्नई में, अभी तो वो सिटी के बीच में है, और भगवान पार्थसारथी से प्रार्थना करते हैं, और जिसके फलस्वरूप उन्हें श्रीपद रामानुजाचार्य पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य शैलपूर्ण जो महान सन्यासी थे, जब रामानुजाचार्य का जन्म हुआ तो शैलपूर्ण ने ही नामकरण किया था रामानुजा। अब ये शैलपूर्ण स्वयं उनको ऊपर से आए उनका स्वागत करने के लिए, और रामानुजाचार्य ने कहा कोई नया भक्त नहीं मिला, और मेरे स्वागत के लिए आपने क्यों भेजा नहीं, मतलब आप आने से अच्छा कि किसी नए भक्त को भेज दे। तो शैलपूर्ण ने कहा मैं तो सब जगह ढूंढा, कोई नया भक्त नहीं मिला, और वास्तव में कोई मिला तो कौन था, मैं ही था सबसे नया भक्त, कौन हूं मैं हूं, और मैंने सोचा कि अपनी शुद्धि के लिए मुझे जाना होगा आप जैसे महान आचार्य के स्वागत हेतु। तो इस प्रकार से श्री संप्रदाय का यह मूल है, श्री संप्रदाय वैष्णवों की यह स्थिति है। जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन को कहा था सबसे नीचा व्यक्ति ढूंढने के लिए, तो दुर्योधन को कोई मिला नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा, मुझसे अधिक नीच व्यक्ति कोई और नहीं है संसार में। तो इस प्रकार से श्री संप्रदाय की जो हर डिवोटी है, हर आचार्य है, हर वैष्णव है, उनके हृदय में ये मूड है। प्रभुपाद के हृदय भी इसी प्रकार से है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध में हम पढ़ते हैं तात्पर्य में, जब प्रभुपाद ध्रुव महाराज का वर्णन करते हैं, और जब उस श्लोक में वर्णन आता है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज को जब विष्णु दूतास ले जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, पूछा विषय कि मेरी माता भी जा रही है क्या, तो विष्णु दूतों ने कहा देखो देखो दूसरी ओर और एक विमान जा रहा है, आप इतने महान भक्त हो कि आपकी माता को भी वो ले जा रहा है, उनका भी उद्धार हो रहा है। तो प्रभुपाद लिखते इसी प्रकार से मैं भी यही कामना करता हूं कि कोई एक महान भक्त बने मेरे इस छोटे से प्रयास से, और जिसके द्वारा वो भक्त मेरा शिष्य मुझे क्या करे, मेरा उद्धार करे। यही भावना प्रभुपाद के हृदय में भी है। जीव गोस्वामी अत्यधिक प्रभावित हैं रामानुजाचार्य की शिक्षाओं से। जब उन्होंने शरण संदर्भ ग्रंथ की रचना की, तो जीव गोस्वामी ने अत्यधिक भागवतम को स्थापित करने के लिए सबसे अधिक उद्धरण रामानुजाचार्य के प्रदान किए हैं। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने लाइफ में किसी को कॉपी किया है तो वो कौन आचार्य थे, रामानुजाचार्य। क्योंकि रामानुजाचार्य का जो जीवन है बहुत सारे मूल्यवान शिक्षाओं से भरा पड़ा है। तो रामानुजाचार्य का एक लीला आता है कि जब एक बार जब वो उनको पता चला, उन्होंने अपने एक महान जो भक्त है कांचीपूर्ण उनको कहा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। वो अपने बचपन में एक मायावादी गुरु थे यादव प्रकाश, उनके पास पढ़ा करते थे, लेकिन यादव प्रकाश हमेशा मायावाद की शिक्षा देता था, लेकिन किसी कारणवश वो यादव प्रकाश से अलग हो जाते हैं और अपना स्कूल शुरू करते हैं। और एक दिन कांचीपुरम में पहले रहा करते थे श्री पेरम्बदूर में, लेकिन जब उनका पिता का देहांत हुआ तो वो शिफ्ट हो गए कांचीपुरम में, जहां भगवान वरदराज है। वरदराज की जो सेवा है वो एक महान भक्त किया करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण बहुत दूर से चल के आते थे चेन्नई के वहां से, और बीच में श्री पेरम्बदूर पढ़ता था और फिर कांचीपुरम पढ़ता था। तो जब वो चल के आते थे दूर से, तो रामानुजाचार्य का विलेज बीच में आता था, तो ये रामानुजा कहते थे, सोचते थे कब समय आएगा ये महान भक्त का मैं सेवा कर सकूं। तो एक दिन उनको पकड़ ही लेते हैं, हंसीपूर्ण को कहते कि आप चलिए मेरे घर में प्रसाद दीजिए और मुझे अपना शेल्टर या आश्रय प्रदान कीजिए, तो कांचीपूर्ण बहुत विनम्र थे। कांचीपूर्ण कहते मैं तो जन्म से शूद्र हूं, आप तो इतने महान ब्राह्मण हो, इतने विद्वान हो, पंडित हो, मैं शूद्र हूं, नीच हूं, नगण्य हूं, मेरे ऊपर तो भरतराज की शायद थोड़ी सी कृपा है, उन्होंने मुझे थोड़ी सी सेवा में लगा के रखा है, मैं योग्य नहीं हूं हे रामानुजा आपसे सेवा स्वीकार करने के लिए। लेकिन फिर भी रामानुजा उनकी सेवा करते हैं और एक दिन जब उनको अप्रोच करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दे दो क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, जब तक किसी महान वैष्णव का शरण नहीं ग्रहण करूंगा तब तक कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो ये रोने लगते कांचीपूर्ण, वो कहते कि कृष्ण को बोलने लगते कि हे कृष्ण हे वरदराज आप मुझे क्यों दुखी कर रहे हो, ये सब ऐसे ऐसे बिजनेस में क्यों मुझे गिरा रहे हो, मैं अत्यधिक नगण्य व्यक्ति हो और मुझे ये गुरु का भार क्यों प्रदान कर रहे हो, और वो भी रामानुजा जैसे भक्त का। हाँ कहते भगवान वरदराज को कहते कि ये मेरे लिए असंभव है और रामानुजाचार्य को मना करते हैं, लेकिन रामानुजा सोचते हैं कि वास्तव में आपकी कृपा से ही ये संभव हो सकता है कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। तो रामानुजाचार्य अपने मन में एक बात ठान लेते हैं कि आज कुछ दिनों में इनको मेरे घर में प्रसाद के लिए बुलाऊंगा और इनका वशिष्ठ ग्रहण करूंगा, इनका वशिष्ठ ग्रहण करने से ही मेरा जो कल्पसुप्त कामना से भरा हुआ हृदय है वो मुक्त हो जाएगा और वास्तव में भगवान के प्रति थोड़ी सी सेवा की जो भावना जो कांचीपूर्ण के हृदय में है वो भी मेरे हृदय में जागृत हो सकती है। तो रामानुजाचार्य ने योजना बनाई और उनको कहा कि कल आप मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। तो उन्होंने अपनी जो पत्नी है रक्षा तंबल उसको बोला अलग अलग व्यंजन बनाओ, तो वो बड़े ब्राह्मण की पुत्री थी, रामानुजाचार्य बड़े ब्राह्मण थे। तभी रामानुजाचार्य सुबह सुबह उठे और रामानुजाचार्य ने सोचा कि अभी जाता हूं कांचीपूर्ण को मेरे घर में प्रसाद के लिए बुलाने जाता हूं। तो रामानुजाचार्य जल्दी से निकल पड़े मंदिर में उनको बुलाने के लिए। तो कांचीपूर्ण भी बहुत तेज थे, कांचीपूर्ण ने सोचा रामानुजा तो मुझे बुलाने यहां आ जाएगा, तो वो वहां से निकले। उसी समय में कांचीपूर्ण भी अपने टेम्पल से उनके घर के लिए निकले ताकि उनसे मुलाकात नहीं हो, और कांचीपूर्ण जानते थे कि ये मेरा वशिष्ठ ग्रहण करना चाहते हैं और मेरे लिए मेरे नगण्य मेरे जैसे नगण्य तुच्छ नीच व्यक्ति के लिए वो उचित नहीं है, बल्कि कांचीपूर्ण जैसा डिवोटी कोई और नहीं था श्री संप्रदाय में, जिनसे साक्षात वरदराज वरदराज कृष्णा है 400 वरद उनका एक हाथ ऐसे है, आप जाएंगे दर्शन करेंगे तो इसको लिखा है मा शुचर गीता में है ना भगवान के लिए डरो मत, तो आप कांचीपुरम में जाएंगे तो यहाँ लिखा है भगवान के हाथ में मा शुचर अरे डरो मत, और बहुत बड़े विग्रह है और बहुत सुंदर है। तो कांचीपुरम भी यहां से उनके घर के लिए दौड़ पड़े, तो रामानुजाचार्य यहाँ आ गए कांचीपुरम वहां गए और उनकी पत्नी को कहा जल्दी जल्दी मुझे प्रसाद सर्व करो क्योंकि मुझे सेवा वहां वरदराज की सेवा करनी है, जो भी बनाया हो वो जल्दी मुझे सर्व करो। तो उन्होंने कहा मेरे पति आपका इंतजार करना चाहते हैं, वो आपको सर्व करेंगे, बहुत सारी बातें करने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे विलंब हो जाएगा, आप मुझे तुरंत प्रसाद दे दो। तो उसने प्रसाद सर्व किया और कांचीपूर्ण ने उसको ग्रहण किया और निकल पड़े। और उस श्री ने क्या किया, जो भी उनका पत्तल आदि था उठाया फेंक दिया और जब कांचीपुर और कुकिंग में लग गई और गोबर से सारा सफाई भी कर दिया, फिर रामानुजा दौड़ के वापस आ गए। अभी वो पहुंचते तो कांचीपूर्ण यहां से गायब फिर से अपने भाव। तो रामानुजाचार्य आए और उन्होंने पूछा हे रक्षा कंबर कहां है कांचीपूर्ण, आप तुम कुकिंग कर रही हो, अभी तो कुकिंग खत्म नहीं हुआ, कांचीपूर्ण आए थे क्या? उन्होंने कहा वो आए भी प्रसाद खाया भी और यहां से चले भी गए। तो उन्होंने कहा फिर आप तुम कुकिंग क्यों कर रहे हो, उनका वचिष्ठ कहाँ है? उन्होंने कहा मैंने एक शूद्र स्त्री को दे दिया, मैं नहीं चाहती वो जो शूद्र व्यक्ति है उसका वचिष्ठ मैं अपने पति जो इतने विद्वान बड़े ब्राह्मण है उन्हें दे दूं। अपने पत्नी के वाक्य सुनते ही रामानुजाचार्य रोने लगे। उन्होंने कहा नीच, बहुत उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले और बहुत दुखी हो गए रामानुजाचार्य कि मैंने इस महान अपॉर्चुनिटी को खो दिया कांचीपुरण के वचिष्ठ को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीन महाबल है, वैष्णव के चरण धोले, उनके चरणों का धुला हुआ जल और उनका भक्त भुक्त अवशिष्ट। धरे महाबल, भक्ति में तीन महाबल है। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि मेरी जो पत्नी है वो अनुकूल नहीं है, वो अच्छे से भक्त नहीं और वो बहुत विद्वेषी है। तो रामानुजाचार्य के पहला थॉट आ गया कि इस संसारिक क्या कहते हैं कार्य से मुझे निकलना पड़ेगा। तो फिर कुछ दिन बीतते हैं तो रामानुजाचार्य फिर कांचीपुरण को कहते हैं कि आप क्या करो, आप कांचीपुरण को कहते कि आप भगवान वरदराज से पूछो कि मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अकेले स्टडी करना अध्ययन करना असंभव है। मेरे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं चाहता हूं कि एक डिवोटी एक गुरु मेरे जीवन में हो जिनके द्वारा मेरे सारे संशयों का निरासन हो सकता है। तो आप पूछो वरदराज से कि रामानुजाचार्य के लिए क्या बेस्ट है। तो ये कांचीपुरण वरदराज भगवान के पास जाते हैं और उनका सेवा क्या था पता है आपको? फैन लेना और पूरे दिन फैन करना भगवान को, और जब गर्मी आती थी तो उस फैन को पानी में डुबाते थे और उससे फैन करते थे, उससे कूल हवा आती थी। तो सारा कांचीपुरम जानता था कि वरदराज के कोई प्रिय है तो वह कांचीपुरण है, क्योंकि भगवान रोज उनसे बातें करते रहते थे। तो कांचीपुरण उनको पूछते कि देखो रामानुजा ने मुझे पूछा है कि आप उनके लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान वरदराज कहते हैं उनके लिए छह चीजें उनको बोलो जानो या समझो। पहली चीज क्या है, रामानुजा को बोलो अहम एव परम ब्रह्म जगत कारण कारण। वो कहते हैं कि पहली चीज रामानुजा को जाननी चाहिए है कि मैं परम ब्रह्म हूं, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का कारण हूं या मुझसे ही वो प्रकट हो रही है। वही बात गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि जीव और भगवान का शाश्वत, ये शाश्वत सत्य है कि जीव और भगवान क्या है, अलग अलग है उनका जो अस्तित्व है। और तीसरी चीज है कि यदि इस भौतिक संसार से मुक्त होना है तो पूर्ण रूपेण मेरे चरण कमलों की शरण अनन्य भाव से ग्रहण करना चाहिए एक व्यक्ति को। और चौथी चीज वो कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मृत्यु के समय में मेरा स्मरण करना भूल जाता है फिर भी मैं ऐसे भक्त को क्या करता हूं, मेरे धाम ले जाता हूं, क्योंकि पूरा जीवन उसने मेरी सेवा की है, मेरा स्मरण किया है, चाहे मृत्यु के समय में किसी कारण वो ना भी कर पाए तो ये मेरा वचन है। और पांचवी चीज वो कहते हैं कि जैसे मेरे भक्त इस शरीर को त्यागते हैं तुरंत ही मैं उन्हें अपने धाम ले जाता हूं। और छठी चीज वो कहते हैं कांचीपुरण को कि रामानुजा को बोलो कि यमुनाचार्य के एक महान शिष्य है जिनका नाम है महापूर्ण, उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो जब ये कांचीपुरण सुबह सुबह मिले रामानुजा को तो रामानुजा ने पूछा कि आपने पूछा भगवान से, तो उन्होंने कहा ये छह चीजें आपके लिए बोली है कि आपको दीक्षा स्वीकार करनी है किससे, महापूर्ण जो यमुनाचार्य के शिष्य है। जैसे ये सोचा वैसे ही इन्होंने सोचा कि अभी मुझे निकलना होगा कांचीपुरम से श्रीरंगम, उस समय में चलते हुए 4 दिन लगते थे और अभी तो कई घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे लगते हैं, ड्राइविंग बस है। तो जब रामानुजाचार्य ने सोचा कि मुझे अभी श्रीरंगम जाना होगा और वहां जाकर महापुरुष से दीक्षा लेनी होगी, क्योंकि दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये चलने लगे अपने पत्नी को वहां घर में छोड़कर। चलते चलते रास्ते में पहुंचे तो वहां से भी कौन चलते हुए आ रहा था, महापूर्ण अपने पत्नी के साथ, वो भी महान आचार्य थे और उनको सारे वैष्णवों ने भेजा था, क्योंकि जब यमुनाचार्य संसार से जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे वो अप्रकट हो गए थे और उन्होंने कहा था कि रामानुजा क्वालिफाइड है इस संप्रदाय को आगे ले जाने के लिए। तो यमुनाचार्य को शरीर त्यागते हुए 1 साल हुआ था, उस समय उनके जो आगे के डिवोटी थे जिनका नाम था वररंगा, उन्होंने कहा कि हम 1 साल बिताया और हमने देखा कि हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है हमारे आध्यात्मिक गुरु के जैसे कृष्ण कथा करने में और सबको इंस्पायर करने में, इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि हम कांचीपुरम से रामानुजाचार्य को वापस यहां लाए और उनके अधीन होकर हम शिक्षा उनसे ले लें। तो उन्होंने कहा कौन वो व्यक्ति है जो जा सकता है कांचीपुरम में, तो पहले तो महापुरुषों को भेजा था स्वयं यमुनाचार्य ने, तो वररंगा ने कहा कि महापुरुष क्वालिफाइड है, उनको भेजो उनको दीक्षा देने के लिए। तो यहां से महापुरुष स्वयं जा रहे थे, वहां से रामानुजा आ रहे थे, इनका मीटिंग बीच में नदी के किनारे हुआ और रामानुजाचार्य ने उनको अप्रोच किया, धन्यवाद किया और उन्होंने कहा आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा अरे दीक्षा तो मैं तुम्हारे जो सबसे प्रिय विग्रह है वरदराज उनके समीप करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु काल किसके लिए रुकता नहीं है, अभी आप दीक्षा प्रदान कीजिए मुझे यहां वृक्ष के नीचे नदी के तट पर, क्योंकि आपका शरण लेना मुझे बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर वहां उनको दीक्षा प्रदान की जाती है, फिर रामानुजा के साथ महापुरुष कांचीपुरम आते हैं अपने गुरु को लेकर, जिनके साथ उनकी पत्नी थी, और अपने घर में एक एरिया में उनको स्थान प्रदान करते हैं। तो एक दिन ये जो रामानुजा है, रामानुजा और उनकी उनकी जो पत्नी है वो पानी लाने के लिए कुएं में गए, कुएं के पास गई और महापुरुष जो उनके पति के जो गुरु है उन्होंने दोनों को दीक्षा दिया था, उनके पत्नी को भी दीक्षा दिया था। तो जब ये रामानुजाचार्य की पत्नी जल लाने के लिए अपना घड़ा लेकर पहुंची तो इनकी पत्नी भी पहुंची और वहां जब महापुरुष की पत्नी जल ले रही थी कुएं से तो कुछ बूंदे गिरी रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े के ऊपर, तो वो आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि ये शूद्र नहीं चाहती है, मेरे पति को कोई काम नहीं है, जिनको अपने घर में रखा है इन्होंने, पाल रहे पोस रहे उनको खिला रहे हैं, मेरे पति ने क्या जगह दे दी तो हमारे सर में चढ़े, हम इतने बड़े ब्राह्मण हैं, हमारा कुल इस प्रकार से है। ऐसे ऐसे बोलने लगी वो कि महापुरुष की पत्नी वहां उसी क्षण रोने लगी और आते महापुरुषों को कहा और महापुरुष ने कहा यह उचित नहीं है कि जिन्होंने हमें शेल्टर दिया अब उनको कष्ट हमसे हो, तो हमारे लिए वो स्थान रहने योग्य नहीं है, बेटर है, अच्छा है कि उस स्थान को हम त्याग दें और वापस श्रीरंगम में चले रंगनाथ की सेवा में। तो तुरंत उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया, किसी को कुछ कंप्लेंट नहीं की और वहां से महापूर्ण और उनकी पत्नी निकल पड़े। रामानुजा घर में नहीं थे, रामानुजा आए वापस तो उन्होंने देखा कि उनका घर खाली हो गया है, उनके आध्यात्मिक गुरु नहीं है, उनका सामान आदि नहीं है। तो रामानुजा पूछने लगे तो उनके पत्नी ने जो भी घटना हुई थी वो सीधे सीधे बोल दी, तो रामानुजा बहुत दुखी हो गए थे। रामानुजा वहां से चलकर अपने प्रिय जो डिटीज है वरदराज के पास आए और उन्होंने कहा वरदराज कब वो समय आएगा जब मैं संसारिक बंधन से निकल जाऊंगा और पूर्ण रूपे ने अपने आपके शरणागत होकर आपकी सेवा में तत्पर हो जाऊंगा, कुछ ऐसा कीजिए। तो एक दिन जब वो वापस आ रहे थे वरदराज के मंदिर से, तो एक ब्राह्मण उनको मिला। वो उसके लिए मतलब बहुत पतला दुबला पतला ब्राह्मण था। उसको रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए। अरे ब्राह्मण, इतना दुबला पतला, कुछ ऐसे प्रसाद आदि मिलता है कि नहीं, दान आदि, जिसके कारण उसका शरीर ऐसे कि हवा का झोंका आ जाए तो भी गिर पड़े। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि ब्राह्मणों की ये दशा कि उनको प्रसाद भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, आपके घर से आ रहा हूं। आपके घर में मैं गया, आपकी पत्नी मुझे धुतकार कर भेज दिया है। हाँ, जब ये ब्राह्मण गया भिक्षा मांगने, उनकी पत्नी ने इतना गुस्सा, कहां से चल के आते, भागो यहां से, डांट फटकार कर वो बेचारे ब्राह्मण को वापस भेज दिया था। रामानुजा ने कहा, मैं फिर से तुम्हें अभी मेरे ही घर में भेजता हूँ। रामानुजा ने एक पेज पेपर लिया, पेन लिया, उसमें एक लेटर लिखा। कहा, ये जो चिट्ठी है, ये जाओ मेरे घर में और मेरे पत्नी को कहो कि मैं आपके मायके से आया हूं, और ये जो खत है, ये चिट्ठी है, आपके पिता ने भेजी है रामानुजा के लिए। तो वो जाता है चिट्ठी लेकर, पहुंचता है तो पत्नी नाम सुनते ही, कहाँ का नाम सुनते, मायके का। अभी अभी उसको भगाया था, उसके नहाने के लिए गर्म पानी देती है, कहते बैठो ब्राह्मण देवता, आसन देती है आपके लिए, मैं सुस्वादु व्यंजन अभी अभी तैयार करती हूँ। तो वो लगी हुई थी, व्यंजन बनाए, उसको खिलाया पिलाया। तो रामानुजा पहुंच गए, उन्होंने, क्या है, कौन आया है आज घर में? तो वो कहते कि मेरे भाई किसी ब्राह्मण आया है और आपके लिए विशेष खत लेकर आया है। तो रामानुजा खत पढ़ते हैं, खुद ही लिखा था उन्होंने, रामानुजा ने, कि मतलब उनके ससुर वहां से लिख रहे थे कि हे मेरे प्रिय, क्या कहते, दामाद, घर में अभी अभी रक्षा कंबल की जो छोटी बहन है, उसका विवाह का बहुत जोरदार तैयारियां हो रही है, बहुत सारा कार्य है, उसकी अकेली माँ इसको संभाल नहीं पा रही है, तो उसकी सहायता हेतु आप क्या करो, रक्षा कंबल को जितना जल्दी हो उतना भेज दो। तो रामानुजन ने तो पढ़ा, तो उसके सामने जोर जोर से पढ़ा। उन्होंने कहा, देखो मैं तो अभी आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे वरदराज की सेवा है चप्पल में, तुम क्या करो अभी इस ब्राह्मण के साथ चले जाओ। तुरंत पैक करवाया रामानुजा ने उसका लगेज और भेज दिया। इतने आनंदित हो रहे थे रामानुजाचार्य हृदय से। और फिर उस जैसे वो गए, तुरंत दौड़कर जाते हैं, कहा, अपने जो प्रिय विग्रह है वरदराज के पास। और जाते से पहले पहले मार्केट जाते हैं, सैफरन धोती कुर्ता खरीदते वस्त्र, और अब जाए वरदराज का चप्पल थोड़ा सा हिल पर है, सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो वहां जब वो चढ़े ऊपर, वरदराज के सामने गए अकेले, अभी उनके पास कोई नहीं है जिनसे वो संन्यास स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने वरदराज से क्या किया, वस्त्र स्वीकार किए, डंडा स्वीकार किया, और अभी अभी अपने ये सफेद वस्त्रों में अंदर गए थे, हाँ, गेरुआ वस्त्र धारण करके, संन्यास का वेश धारण करके श्रीपद रामानुजा बाहर पढ़ते हैं। बाहर आते, लेकिन अब उनका नामकरण नहीं हुआ था, अब तो रामानुजा पहले से ही नाम था उनका। बाहर आते हैं, अनंत सरोवर है उसके सामने, वहां कांचीपुरण उनको मिलते हैं। कांचीपुरण उनका नामकरण करते, यतिराज, सन्यासियों में जो क्या है, किंग है यतिराज, हाँ, श्रीपद रामानुजाचार्य, और भी उनको नाम दिए गए। तो जब इन्होंने इस प्रकार से संन्यास स्वीकार किया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जब संन्यास ग्रहण करना था, उस समय कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में अपने आध्यात्मिक गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का फोटो रखा, और उससे क्या किया, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया और नामकरण खुद ही किया, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती। हाँ, तो देखा जाता है गौड़िया पर जो प्रभाव है एक प्रकार से वो श्री संप्रदाय का है, क्योंकि जो पूजा विधि आदि है वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा हमें प्रदत्त है, जिन्होंने सनातन गोस्वामी के साथ हरि भक्ति विलास को कंपाइल किया था। सारे वैष्णव सदाचार आदि एक प्रकार से उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो कई सारी लीलाएं हैं रामानुजाचार्य की और बहुत शिक्षाप्रद और बहुत पावरफुल है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य काफी साल रहे और उन्होंने अपना देह आज के दिन ही है श्रीरंगम में छोड़ा था। श्रीरंगम श्री संप्रदाय के चार प्रमुख स्थान है, जैसे गौड़ियास के लिए मायापुर वृंदावन और जगन्नाथपुरी है, श्री संप्रदाय के लिए कांचीपुरम, श्रीरंगम, तिरुपति और तिरुवनंतपुरम, मतलब जो मैलकोटे हैं वो, ये चार प्रमुख स्थान है श्री वैष्णव के लिए। श्री वैष्णव वहां जाते हैं और हर ये जो चार स्थान अलग अलग प्रमुख चीजों को प्रकट करता है। जो तिरुपति है जहां भगवान निवास करते हैं बालाजी के रूप में, जिसे कहते हैं पुष्प मंडल। पुष्प मंडल बालाजी बहुत आनंदित होते हैं जब उनको फ्लावर्स ऑफर किया जाता है, इसलिए तो रामानुजाचार्य ने देखा बालाजी के वहां कुछ भी सेवा नहीं हो रही थी। एक दिन वो लेक्चर दे रहे थे श्रीरंगम में, तो उन्होंने कहा कौन ऐसा मेरा शिष्य है जो उस पहाड़ पर जाए और बालाजी की सेवा के लिए फ्लावर गार्डन आदि बनाए। तो इतने बड़े बड़े धुरंधर सन्यासी ब्रह्मचारी सब थे, कोई खड़ा नहीं हो रहा था। एक गृहस्थ शिष्य खड़ा हो गया, गुरुदेव आपके लिए मैं जाऊंगा। और उस समय कोई चढ़ नहीं सकता था उस हिल के ऊपर जहां शेर और इतने भयानक प्राणी हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ गए और वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया। आज भी आप जाते हैं बालाजी हिल पर तो रामानुज सरोवर उन्होंने नाम दिया है और वहां उन्होंने फ्लावर गार्डन बनाई और बालाजी की सेवा की। दूसरा स्थान है कांचीपुरम। कांचीपुरम को कहा जाता है त्याग मंडल, मतलब वहां भगवान की सेवा के लिए कुछ भी त्यागने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जैसे रामानुजा ने अपने परिवार आदि को भी त्यागा, भगवान भरद्वाज हमसे त्याग की अपेक्षा करते हैं। और श्रीरंगम है भोग मंडल, भोग मंडल या मंडप भी कहते हैं। भोग मंडल मीन्स कि वहां रंगनाथ सारे चीजों के एकमात्र भोगता है और वहां हर एक व्यक्ति को केवल उनको आनंद देने के लिए उनके भोग हेतु, भगवान के भोग हेतु तैयार होना होता है। इसलिए 365 दिन हर रोज श्रीरंगम में फेस्टिवल होता है, क्योंकि रंगनाथ भोग मन स्वीकार करते हैं, आनंद स्वीकार करते हैं। और जो चौथा स्थान है मैलकोटे, वहां विद्या मंडल कहते हैं उसे। विद्या मंडल मीन्स वहां रहकर रामानुजाचार्य काफी साल रहे और वहां उन्होंने क्रय ग्रंथ लिखे और जो वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की। और वहां रहकर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अध्ययन करता है तो वो भगवत प्रिय बन जाता है। तो ऐसे कई सारी शिक्षा रामानुजाचार्य से हम सीख सकते हैं। आज के दिन ही उन्होंने अपना देह त्यागा था अपने दो शिष्यों के, गोविंद उनके एक शिष्य थे जिनके गोद में अपना सर रखा, और उनके एक दूसरे शिष्य थे अन्नपूर्णा जिनके गोद में अपने चरण रखे और सामने अपने आध्यात्मिक गुरु यमुनाचार्य के चरण पादुकाओं को अपने आंखों से कंटिन्यूअसली देखते हुए इस जगत से उन्होंने क्या किया, प्रयाण किया। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य आज अप्रकट होते हैं। तो आज के दिन हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए। तो हम अपने हृदय में विशेष शुद्धि अनुभव करते हैं ऐसे वैष्णव को गुणगान करने से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिभुवन में एक चीज बहुत आनंददायी है और वो है भक्तों की प्रशंसा करना, आचार्यों का गुणगान करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब भी मौका मिलता था, चैतन्य चरितामृत के हर पन्ने में या हर लीला में देखते हैं, महाप्रभु को जब भी मौका मिला उस समय उन्होंने अपने भक्तों की अपने मुख से भर भर के प्रशंसा की है। और ऐसे आचार्यों की प्रशंसा या गुणगान से ही गुणगान में ही हमारा हित है, जिसके द्वारा हम परम सिद्धि लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुवाति महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।